आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th के साइंस का 13 चैप्टर है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखा था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। और एक्टिविटी 13.1 करके हमने ये भी देखा था कि हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट से। ये आपने कैसे देखा था? आपने देखा था कि ये करंट कैरिंग वायर, कॉपर वायर के पास में जब आप एक कॉम्पस नीडल लाए थे जो कि मैग्नेटिक होता है, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। तो उस डिफ्लेक्शन से आप ये समझ सकते हैं कि उसमें करंट कैरिंग वायर जो है, जब उसमें करंट पास हो रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपके कॉम्पस नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रही है। उसके बाद हमने बात की थी कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने खोज की थी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में कोई ना कोई लिंक है, वो थे हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड। इन्होंने कहा था कि इन्होंने बाय चांस ही ये डिस्कवर कर दिया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में कोई ना कोई लिंक है। इनका कहना था कि जब ये कॉम्पस नीडल लेकर के गए थे एक करंट कैरिंग वायर के पास, तो वहाँ डिफ्लेक्शन देख करके इनको समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ लिंक है बिटवीन इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसीलिए इन्होंने एक ब्रांच नई शुरुआत की थी, ब्रांच की शुरुआत की थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसकी नींव इन्होंने रखी है, जिसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, टेक्नोलॉजीज बनी हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड बनी है। और इन साइंटिस्ट को ऑनर करते हुए मैग्नेटिक जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट ओयस्टेड रखी जाती है। उसके बाद आगे हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप किसी मैग्नेट के अराउंड देखें तो वो बताता है बेसिकली कि किसी दूसरे अगर मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को आप पहले वाले मैग्नेट के आसपास लाएं तो उस दूसरे मटेरियल के द्वारा फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाएगा, वो फोर्स किस तरीके का होगा, क्या डायरेक्शन होगी, वो सारा पता चल जाता है आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। और यहाँ पर हमने ये भी बात की थी कि अगर आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाते हैं तो वहाँ रिपल्शन होती है, यानी कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाओगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगी, तो इस तरीके से हमने देखा था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आप बार मैग्नेट के लाइक पोल्स को पास में लाए तो क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाए तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होगी, और नॉर्थ और साउथ को लाएंगे पास में तो वहाँ पर अलग तरीके की डिफ्लेक्शन शो होगी। उसके बाद आप लोगों ने एक्टिविटी 13.2 में देखा था कि अगर आप आयरन के फिलिंग्स को, पाउडर को बार मैग्नेट के पास छिड़क देते हैं, आसपास छिड़क देते हैं, तो आप एक अजीब तरीके की डिज़ाइन नोटिस करते हैं। ये डिज़ाइन जो है वो बेसिकली बता रहा है कि उस बार मैग्नेट के अराउंड फोर्स किस तरीके की एक्सपीरियंस की जाएगी बाय अ डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो फील्ड लाइंस बन जाती हैं, ये जो डिज़ाइन बना है, ये बेसिकली फोर्स की डायरेक्शंस जो है वो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बताता है कि कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पर है, और साथ में डायरेक्शन भी आप लोगों को पता चल गई थी एक्टिविटी 13.3 करके, जिसमें आपने ये देखा था कि जिस डायरेक्शन में आपके कॉम्पस नीडल का नॉर्थ पोल पॉइंट करता है, नॉर्थ साइड आपके कॉम्पस नीडल का नॉर्थ साइड जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, वही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आपने समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ फोर्स एग्जर्ट करती है और उसके कुछ डायरेक्शन भी होती है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कुछ मैग्नीट्यूड भी है और कुछ उसकी डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम एक कॉम्पस नीडल यूज़ कर सकते हैं, और कॉम्पस नीडल का नॉर्थ जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वही बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से है। और आपने यहाँ पर देखे थे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड लाइन है, इट एमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट एंटर्स द साउथ पोल, तो इस तरीके की डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट की इनसाइड कैसे होती है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जहाँ पर क्राउडेड ज़्यादा है, जहाँ पर ये पास पास में ज़्यादा है, इसका मतलब है वहाँ पर फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाएगा। और हम देखते हैं कि ज़्यादा पास पास में जो फील्ड लाइन्स है वो मैग्नेट के पोल्स के पास में होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब आप किसी दूसरे मैग्नेट को मैग्नेट के पोल्स के पास में लाएंगे तो उससे वहां पर सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी। जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे फोर्स एक्सपीरियंस कम होता है और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाता है। अगर गैप कम है इसका मतलब वहां फोर्स ज्यादा है, गैप ज्यादा है इसका मतलब है वहां पर फोर्स कम है। उसके बाद हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं, यानी कि ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से होती हुई साउथ पोल में एंटर करती हैं और फिर मैग्नेट के इनसाइड ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में ट्रैवल करती हैं। तो इस तरीके से डायरेक्शन जो है ये देखते देखते हम ये भी देखते हैं कि क्लोज्ड लूप्स का फॉर्मेशन बनता है, यानी कि ये ओपन लूप्स नहीं है, ये पूरी क्लोज्ड है। बाहर मैग्नेट के बाहर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस तरीके से पूरा का पूरा जो फील्ड लाइन बनता है तो वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने फील्ड लाइंस की देखी थी वो ये थी कि कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर वो क्रॉस कर रही हैं तो उसका मीनिंग ये होगा कि जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट पर फोर्स की दो दो डायरेक्शन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फोर्स की कोई एक ही डायरेक्शन होगी, तो इसीलिए कभी भी फील्ड लाइंस आपको क्रॉस करती हुई नहीं दिखेंगी। आपको कभी ऐसा पूछा जाए कुछ डायग्राम्स दिखा करके कि कौन सा गलत है फील्ड लाइंस के बारे में और आपको एक डायग्राम ऐसा बनाया जिसमें कि फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो आप उसे मार्क कर देंगे कि ये गलत है। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसी से आपको यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने ये तो समझ लिया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है जब उसमें करंट पास हो रहा है तो उससे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो शो करता है। अब वो किस तरीके से ये शो करता है ये सारा भी हमें देखना है कि किस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट के तरीके से फंक्शन करता है, उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, उसके आसपास भी अगर आप किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लाते हैं तो उसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। तो जिस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी अराउंड अ बार मैग्नेट, सिमिलरली यहाँ पर आप करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 13.4। आपने सबसे पहले जो एक्टिविटी की थी 13.1 उसमें आपको ये तो पता लग गया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 13.4, इसको करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप लोगों को सबसे पहले तो एक कॉपर की वायर, लंबी वायर चाहिए होगी, थिक वायर। साथ में आप लोगों को दो या फिर तीन 1.5 वोल्ट के सेल्स चाहिए होंगे और आप लोगों को प्लग की चाहिए होगा और आप लोगों को एक कॉम्पस भी, कॉम्पस नीडल जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो भी चाहिए होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करें, उसके बाद आप यहाँ पर कनेक्शन करना शुरू कर सकते हैं। तो आपको कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि आप किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पर आप ये सारा कनेक्शन करेंगे और आपको एक सर्किट तैयार करनी है। और ये सर्किट जो है ये आप देख सकते हैं पेज नंबर आपको 226 पर फिगर 13.5 में, आपको 13.5A में आपको जो दिखाया सबसे पहले वो सर्किट बनानी है। इसमें आप देख सकते हैं आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने जो आपके सेल्स हैं उनको लगाया हुआ है, तो उसका आप ये ध्यान रखें कि आपने किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, क्योंकि आपको दूसरे सिचुएशन में डायरेक्शन चेंज करनी है। तो आप सबसे पहले सिचुएशन जो है उसमें आप लोगों ने अपने सेल्स को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया हुआ है जिसकी वजह से बैटरी का कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने सीरीज कनेक्शन में आप एक वायर लगाइए, सिंपल वायर लगाइए और उसको आपका जो कॉपर वायर था उससे जोड़ करके प्लग की के साथ जोड़ दिया। अब ऐसा करने के बाद आपने प्लग की को क्लोज करते ही आपका स्विच जो है वो ऑन हो गया, तो आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने लगा। अब आप देख सकते हैं कि करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो किस तरीके का है। करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरीके की है, क्लॉकवाइज है। और आप अगर अपने कॉपर वायर को ध्यान से देखें फिगर 13.5A में, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो कॉपर वायर है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। पेज नंबर 226 पर देखो फिगर 13.5A पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है इसमें देखो, इसमें करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है कॉपर वायर के अंदर वो किस तरीके की है, इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ऐसे में करंट की डायरेक्शन तो आपको मालूम है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्योंकि आपने बैटरी की कनेक्शन इस तरीके से की है तो आपको पता होगा। अब आपने जो कॉम्पस नीडल प्लेस करना है वो कहाँ प्लेस करना है, जो आपने कॉपर वायर लगाई हुई है सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर जिस डायरेक्शन में करंट की फ्लो हो रही है इसी तरीके से आप लोगों को कॉपर वायर की जो डायरेक्शन है उसके बिल्कुल ठीक नीचे कॉम्पस नीडल प्लेस करनी है, और कॉम्पस नीडल जो आपकी वायर है उसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे ही आपकी सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, तो अगर आपकी करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो आपकी कॉम्पस नीडल जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आप लोगों को दिखेगा एक्टिविटी करते वक्त। अब यहाँ पर अजीब क्या था, अजीब ये था कि आपने पहले करंट पास नहीं कराया था जब कॉपर वायर के अंदर, तो आपने जिस तरह से कॉपर वायर को रखा था ठीक उसके नीचे जो कॉम्पस नीडल है उसको भी रख दिया था बिल्कुल पैरेलली, जिस तरीके से कॉपर वायर है बिल्कुल ठीक उसके नीचे कॉम्पस नीडल की भी आप लोगों को प्लेसमेंट रखनी थी। तो इससे क्या हो रहा था कि वो तो पहले सेम दोनों के दोनों जगह पर थे, सेम पोजीशन पर थे, जिस पोजीशन पर कॉपर वायर है बिल्कुल उसके ठीक नीचे ही मान लो कॉम्पस का नीडल आपने प्लेस कर दिया है, तो ऐसे आपको ये स्ट्रेट लाइन में ही दिख रहे हैं, ऊपर कॉपर का वायर उसके नीचे कॉम्पस नीडल, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब आपने क्या किया कि आपने प्लग की को क्लोज कर दिया यानी कि स्विच ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो हुआ फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। तो इससे जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो आपने एक अजीब बात नोटिस की कि आपकी कॉम्पस नीडल जो पहले वायर के बिल्कुल ठीक नीचे थी अब उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है एंड इट इज डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, और डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर पता लगा कि जब करंट फ्लो कर रहा हो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन तो ऐसे में कॉम्पस नीडल की रिफ्लेक्शन होगी टूवर्ड्स द ईस्ट। अब दूसरी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपने जो सेल्स की कनेक्शन की हुई थी पहले सिचुएशन में उसका रिवर्स कर दीजिए, जिस दिशा में पहले आपने पॉजिटिव टर्मिनल रखा था अपने बैटरी का, अब उस दिशा में आपको नेगेटिव टर्मिनल रखना है। तो इससे क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी तो अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और इस केस में जो सेकेंड सिचुएशन है आप देख सकते हैं फिगर 13.5 बी पार्ट, पेज नंबर 226 फिगर 13.5 बी पार्ट, इसमें करंट की फ्लो की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और कॉपर वायर में अगर आप देखें तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन। और यहाँ पर भी सबसे पहले मान लो आपने जब प्लग की को ओपन रखा हुआ है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है जिस वक्त, क्योंकि आपने स्विच ऑफ किया हुआ है, तो जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो आपने कैसे रखा था, कॉपर वायर के ठीक नीचे आपने कॉम्पस नीडल लगाई हुई थी, लेकिन जैसे ही आपने करंट पास कराया अपने सर्किट के अंदर तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन, और इस सिचुएशन में जो आपके नीडल में डिफ्लेक्शन दिख रही है इट इज डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। तो फिर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चेंज ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी जरूर बदलाव आ रहा है, क्योंकि उसी वजह से आपका कॉम्पस नीडल जो है उसकी डिफ्लेक्शन भी डायरेक्शन चेंज कर रही है। पहले केस में इट वॉज डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, सेकेंड सिचुएशन में इट इज डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं कॉपर वायर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जरूर वो रिवर्स हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी डायरेक्शन भी उल्टी दिख रही है, पहले ईस्ट दिख रही थी बाद में दूसरे सिचुएशन में वो वेस्ट में शो कर रही है डिफ्लेक्शन। तो ये तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको बस ये पता लग गया कि आप अगर करंट की डायरेक्शन में रिवर्सल लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी रिवर्सल आएगा। इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन भी बहुत मायने रखती है अगर आपको पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पर आपको चेक करना है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ऑन पेज नंबर 226 कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर किस तरीके का होता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होगा अगर आपने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी 13.5 करनी है और पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का जनरेट होगा बाय अ कंडक्टर जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है और उसके थ्रू करंट पास हम करा रहे हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो कि स्ट्रेट है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए एक्टिविटी 13.5 करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या है, बैटरी चाहिए 12 वोल्ट की, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का कोई सोर्स चाहिए जिसे हम रियोस्टैट भी कहते हैं, अमीटर चाहिए जिसकी रेंज 0 से 5 एम्पीयर की होनी चाहिए, एक प्लग की चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और एक लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर चाहिए। जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उससे अलग आपको एक कॉपर वायर चाहिए जो कि थिक होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। अब क्या करिए कि आपको ये एक्टिविटी प्रोसीड करनी है अगर आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी करने के लिए क्या करना होगा, एक थिक आपको जो कार्डबोर्ड होता है वो लेना है और उस थिक कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आपको छेद कर देना है, जिसके थ्रू आपने अपनी जो कॉपर वायर ली हुई है, थिक वाली लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर जो आपने ली है, इस कार्डबोर्ड के थ्रू पास करानी है जहाँ पे आपने सेंटर में छेद किया हुआ है। अब क्या करिए कि आप कुछ कार्डबोर्ड को सहारे से लगा करके रख दीजिए कि आप इसे हॉरिजॉन्टली रखें, एक जैसे आपका टेबल प्लेस्ड होता है उस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपको रखना है। और आपने जो वायर लगाई हुई है कॉपर वायर, वो कैसे लगाई है, इस कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में छेद करके, और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वायर है, आपके कार्डबोर्ड जो रखा है आपने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी वायर है। तो जो एक्टिविटी आप करेंगे इसमें आप ध्यान रखें कि ना आपका कॉपर वायर ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, आपका कॉपर जो वायर है वो भी ठीक से एकदम फिक्स्ड हो जाना चाहिए और आपकी जो कार्डबोर्ड है वो भी फिक्स्ड हो जानी चाहिए। आप इन सभी चीज़ों को फिक्स करने का इंतजाम करके फिर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली आप पेज नंबर 227 पर आ जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 13.6 ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो देखो, आपको एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर शेप में कुछ दिखाया गया है। ये जो स्क्वायर शेप में आपको दिखाया गया है ये आपका कार्डबोर्ड है। आप रेक्टेंगुलर ले लो, आप स्क्वायर शेप ले लो, कुछ भी ले लो, आपको बस एक कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड आपने लगा हुआ है, कार्डबोर्ड के सेंटर में आपने छेद करके उससे कॉपर वायर पास कराई है। कॉपर वायर कैसे ली है, लॉन्ग थिक स्ट्रेट इस तरीके की कॉपर वायर ली है। अब कॉपर वायर लेकर के कॉपर वायर से आपको कनेक्शन करना है, एक सर्किट बनाना है आपको, जिसका सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है फिगर 13.6 ए पार्ट में, आपको सर्किट डायग्राम दिया है पेज नंबर 227। इसको देख देख के आपको सर्किट को बनाना है, सर्किट को फॉर्म करना है। यहाँ पर आप सर्किट फॉर्म करते हुए क्या ध्यान रखेंगे, कॉपर वायर आपने लगाना है, कॉपर वायर के साथ सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टैट लगाना है, उसके साथ सीरीज में अमीटर लगाना है, अमीटर के साथ सीरीज में आपकी बैटरी जो कि 12 वोल्ट की थी उसे लगाना है, और उसके साथ सीरीज में आपको आपका जो स्विच है उसको लगाना है और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अभी स्विच को ओपन रखना है, यानी कि स्विच ऑफ रखना है, अभी स्विच ऑन नहीं करना है। तो आपने ये सारा जब सर्किट तैयार कर लिया है, जैसे जैसे आपको यहाँ पर शो किया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप बैटरी की भी टर्मिनल्स देखो कि टर्मिनल्स की डायरेक्शन कैसी रखी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर बैटरी की जो टर्मिनल्स रखी है उसको किस तरीके से रखा गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, इसी के ध्यान में रख के आपने एमीटर को भी लगाया है और वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगाया है। तो क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की डायरेक्शन में है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे की डायरेक्शन में, तो करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से होकर के नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू फ्लो करेगा। अब आप क्या करेंगे, आपने जो कार्डबोर्ड लगाया हुआ है इसके आसपास आपने आयरन का पाउडर स्प्रिंकल कर देना है। आपके घरों में नमक छिड़कने वाला जो डब्बा होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो डब्बा आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर डब्बे के अंदर आपने आयरन का पाउडर फिल कर देना है और ये आयरन का पाउडर आपने कार्डबोर्ड के ऊपर इवनली स्प्रेड करना है, बहुत अच्छे से आपको स्प्रेड करना है। थोड़ा सा डैप कर सकते हैं आप चाहें तो अपने कार्डबोर्ड को, ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए आपका ये जो पाउडर है आयरन का। अब क्या करिए कि अब आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है, आपने अपने कार्डबोर्ड के आसपास आयरन का पाउडर छिड़क दिया, अब आप अपनी एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको प्लग की को क्लोज करना होगा, यानी स्विच ऑन करना होगा। स्विच ऑन करते ही आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होगा आपके कॉपर वायर के थ्रू भी। कॉपर वायर जो है यही हमारा मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि इसके थ्रू करंट फ्लो कराना है, क्योंकि इसी के अराउंड हमें चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की हैं। तो कॉपर वायर जो कि स्ट्रेट है, थिक है, लॉन्ग है, इसके थ्रू हमने करंट फ्लो कराना शुरू करा। और करंट के फ्लो की डायरेक्शन किस तरीके की है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की ओर करंट फ्लो कर रही है। तो ऊपर से नीचे की ओर जब करंट फ्लो कर रही होगी तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि जो कॉपर की वायर है इसके अंदर से तो करंट फ्लो कर रही है, इसके आसपास आपने कार्डबोर्ड के ऊपर जो आयरन के पाउडर छिड़के थे वो अपने आप को सर्कुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगे, वो सर्कुलर डायरेक्शन सर्कल्स बनाने लग जाएंगे जो आपकी कॉपर वायर है उसके अराउंड, ये बहुत से सर्कल्स का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। तो ये जो सर्कल का फॉर्मेशन आपको डिजाइन जैसा ये दिखाई दे रहा है, ये सर्कल्स बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं, ये सर्कल्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो करंट कैरिंग कॉपर वायर है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रहे हैं कि क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जैसे आप लोगों ने बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखी थी, सिमिलरली वैसे ही कॉपर कैरिंग कॉपर जो है जो कंडक्ट करंट कैरिंग वायर है, कॉपर आपका एक करंट कैरिंग वायर है जिसके थ्रू करंट पास कर रही है। इसके थ्रू जैसे ही करंट पास हो रही है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी किस तरीके की प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में आपका कॉपर वायर है उसके आसपास सर्कल्स का फॉर्मेशन होता है, सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और इसके साथ भी आप एक और बात नोटिस करेंगे, वो ये है कि आपने क्या रखा हुआ है, आपने करंट कैरिंग कॉपर वायर की डायरेक्शन जो है वो कैसी रखी है, उसमें करंट की फ्लो की डायरेक्शन कैसे है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल डायरेक्शन होती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और आपका जो सर्कल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्डबोर्ड के ऊपर हो रहा है, कार्डबोर्ड का प्लेन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टली जो फील्ड लाइंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं अगर आपने करंट कैरिंग वायर के अंदर से करंट का फ्लो वर्टिकल डायरेक्शन में कराया। इसका मतलब है कि आपने अगर जो करंट कैरिंग वायर रखा है उसे रखा है वर्टिकल, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कल्स का फॉर्मेशन करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होती हैं। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन क्या है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो सर्कल्स का फॉर्मेशन हो रहा है कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन पाउडर के द्वारा जो सर्कल्स बन रही हैं, इन सर्कल के ऊपर आप कहीं पर भी अपना कॉम्पस नीडल रख दीजिए। कॉम्पस नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो ही डायरेक्शन आपको बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल जाती है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन की थ्रू। क्यों? क्योंकि आपकी नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमने कन्वेंशन को फॉलो करते हुए यही मान के ही चलना है कि जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल की नॉर्थ पोल पॉइंट कर रही होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर सर्कल्स के ऊपर आप अलग अलग जगहों पर मैग्नेटिक नीडल को प्लेस करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पॉइंट करा होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इससे आपको यहाँ पर यह पता लगे कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसे वर्टिकली प्लेस किया गया है तो उसकी हॉरिजॉन्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होती है और वो भी वो सर्कल्स में फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर अपने इसी एक्टिविटी में, आप चाहें तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए आपको टर्मिनल्स जो है उनकी डायरेक्शन पलटनी होती है। अगर पहले सिचुएशन में आपने पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर रखा था तो सेकेंड सिचुएशन में नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर रख दीजिए तो सेकेंड सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। पहले सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर थी तो सेकेंड सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगी। तो जिसकी वजह से अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो तो सर्कुलर ही बनेंगी लेकिन आपको डायरेक्शन अलग दिखेगी। वो कैसे दिखेगी, आप कॉम्पस नीडल को फिर से आप सेकेंड सिचुएशन में रखेंगे सर्कल्स के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है कॉम्पस नीडल का वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर करंट की डायरेक्शन आप पलटते हैं तो कॉम्पस नीडल की डिफ्लेक्शन भी अलग तरीके से होती है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है अगर आपने करंट की डायरेक्शन बदली। तो करंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि करंट का किस तरीके का प्रभाव है तो आप क्या कर सकते हैं, आप करंट में वेरिएशन ला सकते हैं। और करंट में वेरिएशन कैसे लाएंगे, आपने वोल्टेज में वेरिएशन नहीं लाना है, आप वोल्टेज में वेरिएशन नहीं ला सकते, करंट में वेरिएशन लाना चाहते हैं, कैसे लाएंगे, रेजिस्टेंस में वेरिएशन ला करके आप करंट में वेरिएशन ला सकते हैं। आपने रियोस्टैट यूज किया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सोर्स है, आप उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू में चेंजेस लाइए तो करंट के वैल्यू में चेंजेस आएगा। आप ये नोटिस करेंगे कि आप जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि सर्कल्स जो बनेंगी वो क्लोज क्लोज बनने लगेंगी। आपको पता है कि अगर फील्ड लाइंस पास पास में हो, क्राउडेड हो, इकट्ठे होने लगे जिन जगहों पर, इसका मतलब होता है कि वहां पर फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहाँ पर हम इसी एक्टिविटी के थ्रू ये बता सकते हैं कि अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट पर डिपेंड करता है और वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अब ये तो बात हो गई हमारे करंट की। दूसरी बात कि अगर आप कॉम्पस नीडल जो है उसको आपके कॉपर वायर के पास रखें तो किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, दूर रखें तो किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, तो आप ये चेक करने के लिए बता सकते हैं कि कॉपर वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट पास हो रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमारे कॉपर वायर के पास, जितना आप पास लाएंगे उतना ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन। आपकी कॉम्पस नीडल ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करती है इन केस आप कॉम्पस नीडल को कंडक्ट कैरिंग कॉपर वायर के पास में रखते हैं, और अगर आप कंडक्टर यानी कि करंट कैरिंग कॉपर वायर के दूर रखते हैं मैग्नेटिक नीडल को तो उस केस में डिफ्लेक्शन जो है उसकी इंटेंसिटी घट जाती है, कम डिफ्लेक्शन शो होता है। तो इससे आपको कुछ पता चलता है, इससे आपको क्या पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि जो कंडक्टर है हमारा कॉपर का करंट कैरिंग वायर जो है इसके पास पास में, जितना पास में हम रहते हैं उतना ज्यादा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें महसूस होगा, जितना दूर हम चले जाएंगे करंट कैरिंग कॉपर वायर से उतना कम हमें महसूस होगा। तो जितना दूर आप कॉपर वायर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है उससे आप दूर चले जाएंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट जाएगी, पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो एक तो तरीका ये है कि आप कॉम्पस नीडल के डिफ्लेक्शन को देख लो कि ज्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, कम डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। दूसरा एक और तरीका है कि आपको पता है क्राउडेड जहां पर होगी फील्ड लाइंस वहां पर ज्यादा इंटेंसिटी है फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, वहां पर जहां पर फील्ड लाइंस क्राउडेड है। और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप कॉपर वायर के दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड लाइंस में स्पेस गैप बढ़ता जाएगा। फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ने का सिंपल मीनिंग ये है कि इंटेंसिटी घटती जा रही है, फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी घटती जा रही है, क्योंकि पास पास होना, क्राउडेड होना, फील्ड लाइंस का पास पास होना, क्राउडेड होना ये बताता है कि वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं कॉपर वायर से तो वैसे वैसे फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ती जाती है, इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी घटती जा रही है। तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आपने लिया हुआ है या फिर कोई भी कंडक्टर लिया हुआ है जो कि स्ट्रेट है तो उसके थ्रू जब करंट पास होता है तो उसके कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनती है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस जो है हमारे कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर वर्टिकली आपने कंडक्टर प्लेस किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्कल्स की फॉर्मेशन होगी अराउंड दैट कंडक्टर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे बार मैग्नेट में आपको पता है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए कि कंडक्टर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर रखा हो तो उसके अराउंड सर्कल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर करंट की डायरेक्शन में रिवर्सल लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी रिवर्सल आएगा। अगर करंट की आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, और अगर आप पास में रहते हैं करंट कैरिंग वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूर जाएंगे वायर के तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू घट जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर एक और चीज पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल से आपको क्या पता चलता है, आपको बेसिकली पता चल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इजी तरीके से बगैर कॉम्पस को यूज किए। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछें कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर तो आप बगैर कॉम्पस नीडल यूज किए भी बता सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आपको इमेजिन करना है कि आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है उसे आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है और राइट हैंड में पकड़ते हुए अंगूठे की डायरेक्शन पॉइंट कर रही है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन में अगर आपका अंगूठा पॉइंट कर रहा हो तब जब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपने वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है तो उससे जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करती हैं वो डायरेक्शन आपको बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। तो इससे आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएं। तो अभी जो आपने ऊपर वाली एक्टिविटी की इसके अंदर से भी आप इसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं
कि मान लो आपने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है अपना कॉपर का वायर जो कि स्ट्रेट है, करंट कैरिंग है, करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर से नीचे की ओर है। अगर राइट हैंड में आप वायर को पकड़ते हैं कुछ इस तरीके से कि करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो, तो आपकी फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, यानी कि आपकी फील लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी इन केस इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अपसाइड टू डाउनसाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 13.7 पेज नंबर 228 में आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल डायग्रामेटिकली भी दिखाया है और स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉर्कस्क्रू, जैसे मान लो कि आपकी जो नट बोल्ट होती है उसमें आप ये देखते हो कि अगर आपको नट और बोल्ट को कसना है तो उससे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही घुमाना होता है नट बोल्ट को, जिससे कि वो पैक हो जाए। या फिर अगर आपने नट बोल्ट नहीं देखा तो आपने कोई स्क्रू देखा होगा, कील, ऐसी कील जिसके ऊपर सर्कुलर कुछ डिज़ाइन बना होता है, और उस स्क्रू को अगर हम कसना चाहते हैं तो उसको हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कसना होता है। तो ये कहा था मैक्सवेल्स ने कि अगर हम खुद को कंसिडर करें कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हम लोगों ने कॉर्कस्क्रू यानी कि हमारी कील को रखा हुआ है, तो अगर मान लो ऊपर की नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर करंट फ्लो कर रहा है और हमने कील को भी ऊपर से नीचे की ओर रखा हुआ है, उसका जो पॉइंटेड एंड है वो नीचे को पॉइंट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हमें हमारी कील को घुमाना पड़े ताकि वो टाइट हो जाए वो डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। मैक्सवेल्स का कॉर्कस्क्रू रूल हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं अप्लाई करना आए, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि क्या डायरेक्शन है, क्या नई डायरेक्शन है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है कि कंडक्टर जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वायर को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसमें जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो आपकी थंब उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, मुड़ेंगी, वो डायरेक्शन आपको बताएगी कि फील लाइंस की क्या डायरेक्शन है। तो इस तरीके से आप लोगों को डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो यहाँ तक की बात हो गई, आपने जो आज पढ़ा है उसे आपको रिवाइज कर लेना है। कोई भी डाउट्स हो तो आपको अपने टीचर से ज़रूर पूछना है, डाउट्स को फ्रीक्वेंटली क्लियर करते रहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।